ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं
चैव नरोत्तमं
देवीं
सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध 24वां अध्याय शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान श्लोक संख्या 74 बोलते हैं अथ इदं
नित्यदा
युक्तः
जपन्
अवहितः पुमान्
अचिरात्
श्रेयः
आप्नोति
वासुदेव
परायणः
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन् नवहितः पुमान् अचिरात् श्रेय आप्नोति
वासुदेव परायणः
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन् नवहितः पुमान् अचिरात् श्रेय आप्नोति
वासुदेव परायणः
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन् नवहितः पुमान्
अचिरात् श्रेय आप्नोति
वासुदेव परायणः
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन् नवहितः पुमान्
अचिरात् श्रेय आप्नोति
वासुदेव परायणः
ये जपन् अवहितः पुमान्
अथेदं नित्यदा युक्तो
जपन् नवहितः पुमान्
अचिरात् श्रेय आप्नोति
वासुदेव परायणः
अथेदं नित्यदा युक्तो
जपन् नवहितः पुमान्
अचिरात् श्रेय आप्नोति
वासुदेव परायणः अथ
इस प्रकार
इदं
यह
नित्यदा
नियमित रूप से
युक्तः
मनोयोग से
जपन
मन के भीतर जपने से
अवहितः
पूर्ण रूप से सतर्क
पुमान
मनुष्य
अचिरात्
अविलंब
श्रेयः
कल्याण
आप्नोति
प्राप्त करता है
वासुदेव परायणः
भगवान कृष्ण का भक्त
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद
भगवान कृष्ण के भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। तात्पर्य, सिद्धि का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध, पहले स्कंध के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखाः। जीवन का चरम लक्ष्य वासुदेव या श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का कोई भी भक्त केवल स्तुति करने से समस्त सिद्धि, भौतिक लाभ तथा भक्ति प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े ऋषियों तथा महापुरुषों ने, ब्रह्मा तथा शिव ने भगवान कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुतियां की हैं। भगवान श्री कृष्ण शिव विरिंचनुतम कहलाते हैं। भागवतम 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में शिव अर्थात शिवजी तथा विरिंची अर्थात ब्रह्मा, ये दोनों देवता भगवान वासुदेव कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं। यदि हम इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलें और भगवान कृष्ण के भक्त बन सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। दुर्भाग्यवश लोग इस रहस्य को नहीं जानते। नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम्, वे नहीं जानते कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन तथा परम सिद्धि भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा है। भागवत के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक, 5वें अध्याय के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक का 31वां श्लोक, माया से समझौता करके प्रसन्न रहना असंभव है। श्री कृष्ण का भक्त बने बिना मनुष्य केवल दिग्भ्रमित तथा कुंठित बन सकता है। जीवों को इस विपदा से बचाने के लिए ही भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने संकेत किया है, बहु नाम जन्म नामंति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। उनके जन्म जन्मांतरों के बाद, अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद, ज्ञानी मनुष्य भली भांति यह जानते हुए कि वासुदेव रूप में ही सब कुछ है, मेरी शरण में आ जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव के भक्त बनकर हम जो चाहें वही वर प्राप्त कर सकते हैं। ये हिंदी का अनुवाद कुछ व्याकरण के दृष्टि से ठीक नहीं लग रहा है। ठीक लग रहा है क्या? हिंदी भाषी हो ना, इसका ये जरा देखो, ये सिंटैक्स कंस्ट्रक्शन को ठीक है क्या अनुवाद का? हिंदी भाषी हो तो तब तक देख लो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं प्रदाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विश्वपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
थोड़ा इसमें गड़बड़ है महाराज जी,
गड़बड़ है ना
एक्चुअली, इसमें होगा महाराज जी, भगवान कृष्ण के भक्त आ गया ना, तो जिनका होगा जिसका नहीं होगा, जिनका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करता है करते हैं शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे या फिर प्राप्त कर सकते हैं ऐसा।
तो ये अंत में क्या लिखा है?
अंत में लिखा है शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी
होगी। हाँ तो ये
गड़बड़ है मेरे,
इसलिए मैं भी थोड़ा पढ़ने में कभी कभी क्या होता है
तो उनको आएगा, उनको शीघ्र ही।
और अंत में जो वाक्य है कि जब करता है शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि करता है या है ना करेंगे ऐसे कुछ है, प्राप्त सिद्धि होगी ये। तो अनुवाद में ना अलग अलग भाषा में जब प्रभुपाद जी के ग्रंथों को अनुवादित करते हैं तो कभी कभी ऐसे कुछ हो जाता है अनुवाद में, या जो संपादन करने वाले हैं जो देखते हैं कभी कभी इधर उधर हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे जो प्रसंग है, लीला है, स्तोत्र है, स्तुति है भगवान के संबंध में, वो हमें पढ़ना चाहिए, का पठन करना चाहिए। और हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, और इनमें अवश्य ही उस स्तोत्र या लीला के वर्णन के अंत में एक या दो श्लोक ऐसे अवश्य आएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पठन करता है या इस लीला का श्रवण कीर्तन करता है तो उसे इस प्रकार का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं?
श्रुति
फलश्रुति। फलश्रुति अर्थात श्रवण करने का फल। जब हम कुछ श्रवण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कुछ लाभ होना चाहिए ना। हम प्रसाद लेते हैं तो उसका कुछ लाभ होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभ होता है और स्वास्थ्य के दृष्टि से भी लाभ होता है। तो जब तक कोई लाभ न हो हमें, हम कोई कार्य नहीं करते हैं। तो इतना सब कुछ पठन करना है, इतना समय इसके लिए बिताना है, तो व्यक्ति तो सोचेगा ना कि इसका लाभ क्या है इतना समय बिता के। तो इसलिए बार बार ये बताया जाता है कि फलश्रुति क्या है। तो फलश्रुति वास्तव में हम सब भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हम भक्त बनना चाहते हैं, तो हम जितने भी स्तोत्र लीला आदि का पठन श्रवण कीर्तन करते हैं उसके लिए हमारे लिए एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। परंतु कभी कभी भागवतम में हम और भी देखेंगे श्रुति फलों का उल्लेख होता है, जैसे कि नहीं कोई उदाहरण, जैसे कौन से फल मिल सकते हैं, अमुक लीला का श्रवण करने से इस प्रकार का फल प्राप्त, किस प्रकार के फलों की बात, पाप नष्ट हो जाएंगे, भौतिक लाभ, कोई विशेष उच्च लोगों की प्राप्ति करेंगे, लंबा जीवन प्राप्त करेंगे, फिर ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे,
वाक सिद्धि
प्राप्त हो जाएगी, समृद्धि मिल जाएगी,
झूठे आरोपों से
मुक्त हो जाएंगे, या अन्यों पे राज करने के लिए वो क्षमता प्राप्त करेंगे। तो हम पूछेंगे कि भाई हम तो भक्ति करने आए हैं, दूसरों पे राज करने तो नहीं आए ना, या ऐश्वर्य प्राप्त करने तो नहीं आए, स्वर्ग लोक में जाने के लिए तो नहीं आए, यहाँ तक कि ब्रह्म लोक में भी जाने के लिए नहीं आए। तो फिर इन सब चीजों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ में क्यों आता है? हम समझ सकते हैं यदि कर्मकांड ग्रंथ शास्त्रों में ऐसे हो, या किसी अन्य राजसिक तामसिक पुराण में कुछ हो, या धर्म शास्त्रों में कुछ हो, हम समझ सकते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम में ऐसा क्यों, कोई बता सकते हैं?
जब वो श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो उनके सत्र सभा में केवल भक्त नहीं थे, अन्य ऋषिगण या अन्य पंत को अपनाने वाले भी थे।
जैसे किस तरह के पंत या पंत?
योगी जन, कर्मकांडी, ध्यान करने वाले, तो ऐसे अनेक थे। तो उनको कृष्ण प्रेम ही सब कुछ नहीं, उनको भौतिक लाभ जैसे श्रुति फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो भी उनको चाहिए। तो उनकी दृष्टिकोण के लिए सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा फलश्रुति के बारे में बताते हैं।
तो दूध में पानी मिला दिया सुखदेव गोस्वामी ने?
नहीं,
फिर
उनका भी अटेंशन आकर्षित करके
उनका उनको उनकी मानसिकता को देख कर जान कर कैसे उनको भक्ति में लाना। जैसे कभी कभी बच्चे को कुछ ऐसे कार्य करवाना होता है जो उसके लिए अच्छा है, परंतु वो करना नहीं चाहता, तो क्या करते हैं, कभी कुछ मिठाई दे देते हैं, कभी कुछ करते हैं, है ना, ये लो ऐसे लोगे तो हम ये देंगे, या उसको मिठाई में कुछ कड़वा कुछ बना के दे देते हैं, तो देनी है कड़वी चीज़, लेकिन शहद के साथ या ऐसे कुछ मीठे वस्तु के साथ दे देते हैं। तो उद्देश्य ये है सुखदेव गोस्वामी का कि ये जो विभिन्न प्रकार की मानसिकता के लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, उन सबको अंततः वृंदावन की कृष्ण लीला में उनको शामिल करना था। तो सीधे वो बोलते कृष्ण प्रेम की बातें तो इनके समझ के बाहर हो जाती, इसलिए सीधे वृंदावन लीला तक नहीं आए। सुखदेव गोस्वामी चाहते थे तो 7 दिन वृंदावन लीला कर सकते थे, 7 दिन क्या 70 दिन, जितने भी दिन वो कर सकते थे, परंतु सीधे वृंदावन लीला पे जाना, इसके पहले कि वैकुंठ लीला का वर्णन हो, इसके पहले कि भौतिक सृष्टि के सृष्टि लीला का वर्णन हो, इसके पहले कि भक्ति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका स्पष्टीकरण हो, इसके पहले सीधा हम वृंदावन लीला में चले जाएं, तो हो सकता है कई लोग समझ नहीं पाए। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने एक ऐसे रस्सी छोड़ दी जिससे कि सारे लोगों को बांध के उन्होंने रख लिया। तो छोटा छोटा प्रलोभन सबके लिए, तो जो तपस्वी है, जो ज्ञानी है, जो कर्मकांडी है, योगी है, सब लोग सोचे मेरे लिए भी कुछ है इसमें, तो वो भी चलो हम ये पठन करेंगे तो हमको ऊपरी लोकों का ऊपरी लोकों की प्राप्ति भी होगी, हम सत्यलोक तपलोक जा पाएंगे, ब्रह्मलोक जा पाएंगे, और वैसे भले वो जा भी सकते हैं, परंतु धीरे धीरे कृष्ण लीला सुनते 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 सुखदेव गोस्वामी उनको ले गए ले गए ले गए वृंदावन लीला में, और वहां पर कृष्ण लीला सुनते 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 ब्रह्मलोक तपलोक आदि जाने की इच्छा खत्म। कौन से श्लोक है ऐसे जिससे कि श्रवण करते करते इच्छाएं मुक्त हो जाती हैं? क्या अर्थ उसका?
भगवान कृष्ण की लीला कथा सुनने से पुण्य श्रवण है, जो पुण्य श्रवण कीर्तन है
मतलब पुण्य श्रवण कीर्तन का तात्पर्य क्या है? कि कृष्ण कथा अपने आप में ही पुण्यवान है, परंतु जब भक्त करता है इसको, भक्ति से करता है, तो उसको और अधिक लाभ हो जाता है। जो यदि कृष्ण कथा को ऐसे ही पुण्य के रूप में देखकर भी करे तो ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति कर सकता है, परंतु जो भक्ति भाव से कृष्ण कथा को सुनता है, बोलता है, तो वो अवश्य भगवान के धाम को प्राप्त होता है, वो कृष्ण लोक को प्राप्त होता है। तपलोक सत्यलोक की उसकी परवाह नहीं होती है। तो पूरा श्लोक फिर से बोलो। श्रृण्वताम सुनने वाले स्वकथा कृष्ण, तो कृष्ण की कथा सुनने वालों के लिए श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, वो कथा जो कि अपने आप में ही पहले से ही पुण्य है। फिर हृदयंतस्तः अभद्राणी, जो अभद्र चीजें हमारे हृदय में है उनका क्या होता है? विधुनोती अर्थात दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सुहृत सताम अर्थात
जो भक्तों के सुहृद है सताम
अर्थात भक्तों के सुहृद, तो भगवान का उल्लेख है। सुहृत सताम अर्थात भगवान जो कि ऋषियों के भक्तों के सुहृद है, हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक शास्त्रों में पाए जाएंगे जिसमें ये बताया जाता है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करके हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, अभद्र चीजें नष्ट हो जाती हैं और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और हम भगवान के धाम को जाते हैं। और कौन सा श्लोक है? शुश्रुषोष, किसी ने ये कहा, कौन सा श्लोक? श्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो फिर से इसका शब्दार्थ भेद करके
भगवान की कथा में रुचि लाने के लिए
शुश्रूषो शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि, तो वासुदेव या श्री कृष्ण की कथा में रुचि लाने के लिए क्या करना चाहिए? स्यान महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो क्या करना चाहिए? महान भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करने से क्या होता है? भगवान की कथा सुनने की रुचि उत्पन्न होगी। साधारण लोगों के मन में कथा में बैठने की रुचि नहीं रहती। वास्तव में हमारे इस साधारण समाज में तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों को संसार के विषयों के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो सिनेमा के बारे में, खेल क्रीड़ा के बारे में, राजनीति के बारे में, है ना, तरह तरह के प्रजल्प करने में बहुत रुचि है, परंतु भगवान की कथा सुनने की रुचि नहीं होती, क्योंकि वो इतने मग्न हैं उन चीज़ों में। परंतु चलिए, ये तो बात बाहर के लोगों की है, परंतु हमारे भक्त समाज में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? कि भक्त लोग भी सुनना इतना पसंद नहीं करते हैं, इतनी रुचि नहीं आती उनको। जब अक्सर सत्संग के कार्यक्रम होते हैं, रविवार के कार्यक्रम हो, उत्सव हो, जहाँ भी हो, मंदिर में हो, जगह जगह में हो, तो कथा के समय, कीर्तन के समय लोग कहीं दूसरी जगह इधर उधर जाते हैं। यद्यपि हमारे भक्तों, हमारे जो मंदिर होते हैं, भक्त समाज होते हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम सबसे मिले जुले, एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, हरी बोल करके थोड़ा सबसे आदान प्रदान प्रेम का करते हैं, अच्छी बात है। पर उन्हें केवल हरी बोल क्या कि फिर हरी नहीं बोलना कीर्तन में जाते है ना, उसका कोई फायदा नहीं। केवल आके हम एक सामाजिक मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं ना भक्तों के समाज में, तो मंदिर में आते हैं या सत्संग में जाते हैं तो श्रवण कीर्तन करने के लिए जाते हैं प्रमुखतः, और वो भी भक्तों के संग में। तो भक्तों के संग में मुख्य कार्य ये होना चाहिए श्रवण कीर्तन का। जब श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तभी काय होता है, डोका फिरता है, फिरता है कि नहीं। श्रवण कीर्तन नहीं झालं कि मग ते राग येते, ईर्षा, द्वेष, ये सगळं उत्पन्न होते, मग वैष्णव अपराध, हे सगळं होतंय त्याच्यानंतर। डोकं बरोबर ठेवायला श्रवण कीर्तन पाहिजे। श्रवण कीर्तन नाही केलं तर डोकं काय होतंय, फिरतंय, बरोबर आहे की नाही, हा गोष्टी बरोबर आहे। तुम्ही बघा जे श्रवण कीर्तन छान करतात त्यांचं डोकं बरोबर राहतं, त्यांची सेवा भावना बरोबर राहते। श्रवण कीर्तन जे नाही करतात सेवा भाव पण कमी होतोय, सेवा भावामध्ये पण अहंकार येऊन जाते आणि मग भांडण करायची वृत्ती प्रकट होते। त्यामुळे आमचं मूळ जे कार्य आहे ते श्रवण कीर्तन आहे, बाकी सगळं आम्हाला केलंच पाहिजे। विविध प्रकारची सेवा आहेत आमच्या भक्ती मार्गामध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा आहेत, आमची जशी जे सेवा आहे ते आम्हाला केलंच पाहिजे, परंतु प्रमुख सेवा आमची आहे श्रवण कीर्तन। ते जर आम्ही बरोबर केलं तर आमची सेवा पण उत्कृष्ट होणार, छान होणार खूप, कारण आमची चेतना एवढी शुद्ध होणार, एवढं प्रेमाने आम्ही सेवा करणार की भगवंत प्रसन्न होतील। पण श्रवण कीर्तन नाही केलं, डोकं बरोबर राहिलं नाही, तर मग काय होतंय, मग सेवामध्ये पण ते जड वाटतंय आणि काय असं का झालं, असं काय आहे, असं का, तसं का, आणि सगळं भरपूर सगळं डोक्यामध्ये विचार येतात, मग आम्ही नाराज होऊन जातो, सेवा भाव कमी होतोय, उत्साह कमी होतोय, मग आम्ही चुका खूप बघतोय। त्यामुळे श्रवण कीर्तन मुख्य मुख्य आमच्यासाठी। एखादा कधी असं तिकडे तिकडे झालं हरकत नाही, पण साधारणत आम्ही बघितलं पाहिजे की श्रवण कीर्तन खूप प्रबळ असलं पाहिजे आमचं, बरोबर आहे की नाही। सब सहमत है हमारी बातों से? तो ये सब आप याद रखिए, और जिनको भी आप मिलेंगे, भक्तों को मिलेंगे, उनको ये एक बात अवश्य बताइए। चाहे आप बेलगाम में जाएंगे या आमटे में जाएंगे या गवसे में, चिकले में, बेटने में, और कौन सा गांव है, जांबोटी में जाएंगे, ये एक मूल बात हमको बहुत अंदर लगाना है, वो ड्रिल करके अंदर उसको बिठाना है। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन बहुत आवश्यक है। और एक श्लोक कौन सा है इसके बारे में, चरण व्रज सरोरिहांतिक सरोरहांतिकम, कौन सा श्लोक, जो भगवत श्रवण पुटेशु संभृतम, देखो देखिए बताओ, श्रवण पुटेशु मतलब हमारे जो कान के छिद्रों में भर भर के हम सुनेंगे, क्या सुनेंगे, भगवान की कथा का अमृत सुनेंगे तो उसे हृदय शुद्ध हो जाता है। व्रजंती तत् चरण सरोरोहांतिकम, व्रजंती हम जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ जाएंगे, चरण सरोरोहांतिकम, अंतिकम मतलब निकट, चरण सरोर मतलब भगवान के चरण कमल के पास हम जाएंगे। कल रवि परसों रविवार के कार्यक्रम में मैं बतला रहा था, वो सारा प्रवचन प्रभुपाद जी के एक वाक्य से प्रेरित हुआ मेरे हृदय में। मैं प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था जिसमें प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं ग्वाल बालों का की लीलाओं का वर्णन करते हुए कि वो कितने भाग्यशाली थे कि श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे वो। किस तरह के खेल खेलते थे, जब वो जंगल में जाते थे गाय चराने के लिए तो गाय तो चरते थे, तो अपने मित्रों के साथ वो सारे प्राणियों के पक्षियों के नकल करते थे। ऐसे मेंढक आया, मराठी में तो मेंढक लगा मतलब बेड़ू, अब मेंढक बैठा है वो किसी पत्थर पे बैठा है तो आप देखते हैं मेंढक को, देखा है ना वो कैसे देखता है ऐसे करके, तो फिर कृष्ण हो या उनके मित्र हो मेंढक के सामने जाके उसकी नकल करके उसको हाथ में हाथ मिला के बैठते थे। फिर वो टराने लगता था, फिर बच्चा भी टराने लगता टर टर करके, फिर वो मेंढक घबरा के भाग जाता था। फिर कोई आसमान में कोई पक्षी उड़ के जाती तो ये भी बच्चे भी उसकी तरह ऐसे ऐसे करके भागते रहते कि उसको उसकी छाया के साथ 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 चलते। कभी मोर आ जाते उधर, तो मोर जब नृत्य करने लग जाता तो ये भी मोर के साथ प्रतियोगिता करते नृत्य करने के लिए। कभी कोई जानवर की आवाज सुनती सुनाई पड़ता तो वो जाके भी वही आवाज करते, उसकी नकल उतारते। तो इस प्रकार से उनका सारा दिन ऐसे ही जाता था, गाय अपना चर रहे हैं और ये बच्चे सब मिलके ऐसे कर रहे हैं, और ये कौन है जो कर रहे हैं बच्चों के साथ में, भगवान। कौन है भगवान? अच्छा, यहाँ समाज में कोई बड़ा आदमी ऐसे जाके टर टर मेंढक के सामने जाके करे, वो लोग बोलेंगे काय वेड़ा गाला का है, हाँ है कि नहीं। ऐसे कोई सरपंच है, अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बात तो दूर रखिए, कोई सरपंच भी जाएगा बड़ा आदमी होता है गांव में, वो जाके मेंढक को देखेगा टर 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 करेगा ऐसे, तो सोचेंगे ये क्या है पागल हो गया है ना। तो ऐसे सरपंच की बात दूर रही, अभी राष्ट्रपति प्रधान वो भी एक देश के होते हैं, तो अनंत कोटि लोक हैं हर एक ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके अलावा आध्यात्मिक जगत है, इन सब के स्वामी श्री कृष्ण हैं, इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति। कभी लोग ये तकरार करते हैं या शिकायत करते हैं, विरोध करते हैं कि आप लोग बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो भगवान के लिए, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं, तो इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि नहीं मंदिर के लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, परंतु अपने लिए बड़ा बंगला बनाए तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा बंगला क्यों चाहिए, केवल भगवान के साथ इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो कि भगवान के लिए बड़ा मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आपकी हमारी बात छोड़िए, अब देखिए समाज में जो भी बड़े लोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उसका राष्ट्रपति भवन देखो कितना बड़ा है, राज्यपाल का भवन देखो कितना बड़ा है, विशाल राजमहल की तरह है, क्योंकि वो एक स्थान है ना, उसकी गरिमा है कि व्यक्ति इतना बड़ा आदमी है, सारे प्रजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजा है, तो उसको ऐसा घर मिलना चाहिए। ये तो एक देश की बात है, एक राज्य की बात है, और जहाँ तक कृष्ण हैं वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो उनके लिए जितना भी बड़ा आप कुछ बनाओ, जितने भी पैसे खर्च करो, वो कम है। तो खैर, इतने बड़े आदमी आकर इस प्रकार से एक साधारण बच्चे की तरह खेल करके ऐसे मेंढकों के साथ टर 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 कर रहे हैं, मोरों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, चिढ़ाते हैं जानवरों को एक दूसरे को, हमें नहीं चिढ़ाना चाहिए ऐसे जंगल में वो था ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उस प्रवचन में कि हमें हमें भी कृष्ण के साथ खेलने के लिए जाना चाहिए, हाँ हम भी जाएंगे वहाँ, हमें भी खेलना है कृष्ण के साथ जाके। आप में से कितने भक्तों को चाहते हैं वहाँ जाने के लिए, कितने लोग जाके कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं उधर, सब लोग जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए तैयारी करनी है। इससे श्रवण कीर्तन ये और ये, तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन का इतना महत्व, कौन सा श्लोक पे ढूंढ निकाला,
श्रवण ग्रहण संस्मरयम् च चिन्तयन्
व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम् श्रवण पुटेषु संभृतम्। तो ये है श्रवण और कीर्तन का महत्व। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जब ये किया तो वो सबको ले जाना चाहते, सबको साथ में ले जाना चाहते थे ताकि वो सब भक्ति के समझ कर, भक्ति के सिद्धांतों को समझ लें और निष्ठापूर्वक भक्ति कर सकें। तो उनको धीरे धीरे उठाना था, उनके लिए भी कुछ रखना था इसमें। तो साथ साथ में आधुनिक काल में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो कथा सुनने आते हैं वो सब केवल शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्ति ही चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो श्रद्धा से आए परंतु मिश्र भाव लेकर आते हैं। मिश्र भाव अर्थात कोई भौतिक विचार भी मन में रहता है उनके अंदर। और यदि हम केवल शुद्ध 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 भक्ति की बात करेंगे तो वो सोचते अरे हमारे लिए नहीं है। जो सौभाग्यशाली हैं उनको भले वो नए भक्त क्यों ना हो उनको अच्छा लगेगा, परंतु ऐसे भी कई भक्त हो सकते हैं जो प्रारंभ में जब आते हैं ध्रुव महाराज की तरह कोई स्वार्थ लेकर आते हैं, परंतु भक्ति का संपर्क करने के कारण उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो हमारे लिए जो फल शुद्धि है वो एक ही है, कृष्ण प्रेम। परंतु अन्यों के लिए भी एक मार्ग दिया हुआ है, तरह तरह की फलश्रुति, ऐश्वर्य पाएंगे, तपलोक सत्यलोक जाएंगे इत्यादि। मिला श्लोक, गृहपाठ आपके लिए। किसी को याद है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरे स्कंद में देखो, नहीं उसमें तो अभी यहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सिद्धि का अर्थ है भगवान कृष्ण का भक्त बनना, परम सिद्धि है। कौन से श्लोक हैं जिसमें बताया जाता है कि सही सिद्धि क्या है? नहीं, और एक योगी जनों की सिद्धि, भक्तों की सिद्धि,
समसिद्धि हरि,
समसिद्धि हरिदर्शन है
योगी नाम।
हाँ नहीं, हाँ
योगी नाम सर्वेश्वर
नहीं,
गीता का
नहीं, मुक्ता नाम अभिसिद्धा नाम वासुदेव परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। क्या अर्थ है इसका?
मुक्ता नाम अभिसिद्धा नाम वासुदेव, बहुत सारे मुक्त आत्माओं में या सिद्ध आत्माओं में भी जो वासुदेव के परायण है वो श्रेष्ठ है, और प्रशांत
मुक्ता नाम मतलब मुक्त लोगों में, सिद्धा नाम सिद्ध लोगों में। ये किस तरह की सिद्धि की बात हो रही है? भौतिक सिद्धि मतलब योगी जन आदि जो होते हैं ना, तरह तरह के सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, अणिमा लघिमा महिमा इत्यादि, उनकी बात हो रही है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम वासुदेव या नारायण परायण है, इनमें से जो वासुदेव के परायण होते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो वासुदेव परायण के बाद क्या है? सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। ऐसे तो वासुदेव परायण होते हैं, यहाँ पर भी वासुदेव परायण है ना इस श्लोक में, देखिए। तो ये प्रशांत आत्मा होते हैं, प्रशांत प्रकृष्ट रूपेण शांत है, बिल्कुल शांत। सुदुर्लभ बहुत ही दुर्लभ, दुर्लभ ने अति दुर्लभ, कोटिश्व अपि महामुने। तो हे महामुनि गण, कोटि कोटि ऐसे मुक्त और सिद्ध पुरुषों में से विरला ही कोई एक ऐसे प्रशांत आत्मा मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, जो वासुदेव के परायण है। तो इसका तात्पर्य यह है कि साधारण दृष्टि से मुनि है, ज्ञानी है, योगी है, कर्मी है, ये सिद्ध माने जाएं, परंतु जब भक्तों के सामने आते हैं तो वो सिद्ध नहीं कहलाते। वास्तविक सिद्धि भक्ति की सिद्धि है। जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वही सिद्ध होते हैं। और इसलिए यहाँ पे इसकी फलश्रुति बताई गई है कि भगवान कृष्ण के भक्त जिनका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है, और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का जप करते हैं, कौन से स्तोत्र का? रुद्र गीत का। शीघ्र ही जीवन में जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो जीवन की परम सिद्धि अर्थात कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे? नित्यदा युक्त जपन नवहित पुमान, सदैव इस रुद्र गीत का नित्य रूप से जो पठन करता है, ध्यान करता है आदर से, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता है। और प्रचेताओं ने ऐसे ही किया, और करते करते, क्योंकि ये तो लंबे समय तक करना है, तो करते करते आपस में बहुत प्रेम से रहे, बहुत सहयोग की भावना से रहे। ऐसे नहीं कि आम्ही श्रवण कीर्तन करूँ आणि चौसष्ट माळ जप करूँ, परंतु एकमेकामध्ये मग भांडण करत राहू किंवा तर्क करत राहू, एकमेकांना खाली खेचत जाऊ, मग असं श्रवण कीर्तनचा अर्थच नाही आहे। आम्ही राहिलं पाहिजे एकमेकांच्या बरोबर, परस्पर आमचं वागणं असं असलं पाहिजे जसं की प्रचेता गणाचं होतं। 10 भाऊ होते ते, आणि 10 भाऊ ते परस्पर खूप चांगलं सहकार्य एकमेकांचं करून भगवंतांची सेवा करत होते। त्यांच्या पर मध्ये काही ईर्ष्या नव्हती, पूर्ण सहकार्याने एकमेकांना कसं मदत करावी आम्ही भक्तीमध्ये पुढे जायला, कोणाला हे वाटत नव्हतं की त्यांना असं का मिळालं, मला पण मिळालं पाहिजे, ते माझ्या पुढे गेले मी पाठीमागे राहिलो, असं नाही। आध्यात्मिक जगतामध्ये भक्तांचं प्रयत्न असतं की इतर जे भक्त आहेत त्यांना मी पुढे ढकलून जाऊ, ते सगळे पुढे जाऊ दे भक्तीमध्ये, मी त्यांचा सेवक बनतो, त्यांची मदत करतो मी पुढे जायला भक्तीमध्ये। त्यामुळे भगवंत ज्यावेळी प्रचेतांच्या समोर आले खूप प्रसन्न झाले। फक्त त्यांची साधना जप आणि श्रवण कीर्तन नाही, ते तर अवश्य प्रसन्न, त्याच्यामुळे प्रसन्न झाले भगवंत, परंतु त्याच्यापेक्षा जास्त प्रसन्नता भगवंतांना झाली का? कारण त्यांनी बघितलं की हे 10 प्रचेता भाऊ जे आहेत किती प्रेमाने परस्पर वागत आहेत, किती सहकार्याची भावनाने यांचे चालचं चाललंय, माझी सेवा करत आहेत पण सहकार्याने करत आहेत, फार महत्वाची गोष्टी आहे। तर पहिली गोष्टी काय? श्रवण कीर्तन सुदृढ ठेवलं पाहिजे। दुसरी गोष्टी काय? भक्तामध्ये सहकार्याची भावनाने प्रेमाची भावनाने राहिलं पाहिजे. हे आम्ही केलं तर सगळं काही बरोबर होईल. बरोबर आहे ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
कुछ लोग नहीं
क्या बोल गया? पढ़ो.
पिबन्ति ये भगवत आत्मन सतां कथामृतं श्रवण पुटेषु संमृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्.
कौन सा है श्लोक नंबर?
दूसरा स्कंद का दूसरा अध्याय का 27वां.
तो आप सबसे निवेदन है
37
कि आप में से जिन भक्तों को श्लोक पठन करना अच्छा लगता है आप इस श्लोक का पठन अवश्य कीजिए. पिबन्ति ये, पिबन्ति ये मतलब जो लोग पिबन्ति पीते हैं. पीते क्या है? पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सताम, अर्थात भगवान के बारे में जो कि सताम के आत्मा है, भक्तों के आत्मा है, उनके प्राण है, जो पीते हैं. क्या पीते हैं? कथामृतम. किनकी कथा के अमृत? भगवान के, जो कि भक्तों के प्राण है. ऐसे भगवान के कथा के अमृत का पान जो करते हैं पिबन्ति. और कैसे पान करते हैं? अपने मुख से करते हैं. श्रवण पुटेषु संवृतम, अपने कान से भगवान की कथा का अमृत का पान करते हैं. तो फिर से पूर्ण श्लोक बोलो.
पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम.
संवृतम अर्थात भर भर के, पूरा खाली नहीं छोड़ो कान को. जैसे व्यक्ति भूखा रहता है, आपने देखा होगा कैसे खाता है, भर भर के मुंह में खा लेता है ना? ऐसे नहीं कि छोटा सा टुकड़ा लेता है. ऐसे तो भूख लगती है कि नहीं? मुंह में भर भर के डालता है कि नहीं? उसी तरह से हमारे कान भी भूखे प्यासे होने चाहिए. कृष्ण की कथा भर भर के श्रवण पुटेशु संभृतम. फिर
पुनन्ति ते विषय विदूषिताशय.
पुनन्ति, पुनन्ति अर्थात शुद्ध करना, पावन करना. पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम आशयम. तो कौन सी चीजों से शुद्ध हो जाता है हृदय? विषय, जो विषय का प्रदूषण है, विषयों का भोग करना इत्यादि है, उससे हम पावन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं. और फिर व्रजन्ति, हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं?
तत्चरण सरोरुहांतिकम.
तत्चरण, तत् मतलब उनके, भगवान के चरण. सरोरुह, सरोरुह मतलब कमल. तो उनके चरण कम अंतिकम, उनके चरण कमलों के निकट जाके हम पहुंच जाते हैं. क्या करने से?
भर
भर के अमृत कान में डालते हैं. कौन सा अमृत? कथा का अमृत, भगवान का. तो ये श्लोक फिर से हम सब बोलेंगे. चलो उसको पाठ करो.
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम
कथामृतं श्रवणपुटेषु संमृतम्
कथामृतं श्रवणपुटेषु संमृतम्
पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्
पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्
व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्
व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्.
ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है ना? तो श्रवण कीर्तन का पूरा जो फल श्रुति हमारी वास्तविक होनी चाहिए, बस यही है, और कुछ नहीं है हमारे लिए. बाकी जितने भी फल श्रुतियां बताई गई हैं वो केवल सबको आकर्षित करने के लिए है. परंतु जो सच्चे भक्त हैं उनको केवल यही चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्णा।
महाराज, ये श्रवण शब्द जब आता है तो केवल भगवान की कथाओं का ही संबोधित होता है या नाम जप में भी जो हम श्रवण?
हाँ, भगवान से जितने भी संबंधित हैं विषय, जब प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान का नाम, उनकी लीला, उनके रूप, उनका धाम, उनके सामग्री, जितने भी चीज़ें या अलग सब संबंधित है भगवान से, उन सब के बारे में सुनना बोलना, तो अवश्य भगवान का नाम भी आएगा उसमें। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए एक संतुलित एक कार्यक्रम बतलाया है जिसमें हरि नाम का सुनना भी है और कीर्तन करना भी है और भागवतम भागवत कथा भगवत गीता कथा ये भी सुनना पढ़ना है, तो दोनों हमें करने हैं। कोई भक्त कहेगा मैं हरि नाम नहीं लूंगा, मैं केवल भागवत पढ़ूंगा, नहीं, हरि नाम ही महत्वपूर्ण है। कोई कहेगा मैं केवल हरि नाम करूंगा, भागवत श्रवण गीता श्रवण नहीं करूंगा, नहीं, वो भी नहीं होगा। हम हरिदास ठाकुर नहीं हैं, और हरिदास ठाकुर भी पठन करते थे, तो दोनों चाहिए। और एक तीसरी चीज भी चाहिए, सेवा। ऐसे नहीं कि कोई भक्त कहे कि हम केवल श्रवण कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, वो भी नहीं चलेगा। तो पूरे हृदय से जिम्मेदारी से सेवा भी करनी है, परिश्रमी भी होना है हमें। हर चीज का संतुलन हमें समझना चाहिए, बह नहीं जाना चाहिए किसी एक चीज में, बस केवल हम पढ़ाई करेंगे और कुछ बाकी नहीं करेंगे, केवल सेवा करेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होना है। संतुलन होना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। कभी कभी सेवा बहुत ज्यादा हो जाती है और पढ़ नहीं पाते हैं, सुनना भी इधर उधर कुछ हो जाता है, तो कोई बात नहीं, फिर बाद में थोड़ा कुछ ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह से हमें बैलेंस करना है, संतुलन करना है, ठीक है।
अभी आपने ये जिम्मेदारी शब्द का प्रयोग किया, तो वास्तव में हम कैसे बन सकते हैं जिम्मेदारी, ये सभी करते समय, हमारा श्रवण करते समय, हमारा सेवा करते समय
बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि इसके बिना हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमें वास्तविक फल चाहिए हमारे भक्ति का, तो वो मानसिकता जो उपयुक्त है वो भी आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी की भावना से हम नहीं करेंगे तो उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी से नहीं करने का मतलब है कि आधे हृदय से कर रहे हैं, पूरा अपना हृदय उसमें नहीं डाल रहे हैं। जब तक हम पूरा हृदय किसी कार्य में नहीं डालेंगे ना, भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते और न ही उसमें हमें रुचि मिलेगी, है ना। आधा आधा कर लिया, करने के लिए कर लिया, नाम के वास्ते कर लिया, तो उसमें मजा नहीं है और न ही सफलता मिलेगी हमें। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। ये भी एक कथा है।